प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम ईश्वरीय वाणी में आपका स्वागत है। हसन अब्बास और स्वाति का सलाम स्वीकार करें। आज हम कुरान मजीद के सूरह नूह पर चर्चा करेंगे। ये सूरह मक्के में नाजिल हुआ और इसकी आयतों की संख्या 28 है। ये सूरह, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जीवन की घटनाएं बयान करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उल्लेख कुरान मजीद के कई सूरों में है, जिनमें सूरह शुआरा, सूरह मोमिनून, सूरह आराफ, सूरह अंबिया और सूरह हूद का नाम लिया जा सकता है। सूरह नूह की आयतों में बड़े पाठदायक बिंदु हैं। ये आयतें मोमिन इंसानों को सीख देती हैं कि यदि प्रेमपूर्ण स्वर में तार्किक बात पेश की जाए तो शत्रु को भी अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। ये सीख मिलती है कि ईश्वर के मार्ग में संघर्ष करने वाले को कभी थकना नहीं चाहिए। लोगों को अच्छे लक्ष्य की ओर बुलाना है तो उन्हें प्रोत्साहन देने और सचेत करने की मिश्रित शैली अपनानी चाहिए। हठी नास्तिकों को चेतावनी भी दी गई है कि यदि उन्होंने सत्य के सामने सिर न झुकाया तो उन्हें दर्दनाक अंजाम का सामना करना पड़ सकता है।
कुरान की कुछ आयतों में पैगंबरों की कहानियां बयान की गई है, जो अलग अलग कालखंडों में इस दुनिया में भेजे गए तथा उन्होंने मानवता का भविष्य तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। हज़रत नूह भी ऐसे ही पैगंबर या ईश्वरीय दूत थे। वह उलुल अज़्म पैगंबरों में गिने जाते हैं, यानी उन पैगंबरों में जो अलग शरीयत और ग्रंथ लेकर आए। सूरह नूह की शुरुआती आयतों में ईश्वर कहता है, हमने नूह को उनकी कौम की ओर भेजा कि वह अपनी कौम को ईश्वरीय प्रकोप के आ पहुंचने से पहले सचेत करें। उन्होंने कहा कि हे मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए खुला चेतावनी देने वाला हूँ।
चेतावनी देने का अर्थ है अवगत कराना और बड़े खतरे की ओर से चौकन्ना करना। ये उस अलार्म की भांति है जो लोगों को हमले के समय दिया जाता है, ताकि लोग सुरक्षित ठिकानों में छिप जाएं। ईश्वरीय दूत नास्तिकों को डराते थे कि उनके अन्यायपूर्ण बर्ताव और अनेकेश्वरवादी विचार बहुत बड़ा खतरा हैं जो उन्हें मिटा सकते हैं। अतः मौका हाथ से निकल जाने से पहले अत्याचार और नास्तिकता से मुक्ति पालें।
हज़रत नूह के ज़माने में धरती पर भ्रष्टाचार फैल गया था और लोग धर्म तथा न्याय से विमुख हो गए थे और मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। वर्गों के बीच दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शक्तिशाली लोग कमज़ोरों का हक मार लेते थे और उनका शोषण करते थे। इन परिस्थितियों में ईश्वर ने हज़रत नूह को धरती पर भेजा और उन्हें शरीयत और ग्रंथ दिया, ताकि वह लोगों को गलत रास्ता छोड़कर सही धर्म अपनाने और ईश्वर की उपासना करने का निमंत्रण दें। हज़रत नूह अपनी कौम के बीच गए और उन्होंने लोगों से कहा कि ईश्वर की उपासना करो और उसकी ओर ध्यान केंद्रित रखो और मेरा अनुसरण करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा और तुम्हारी मृत्यु को एक निर्धारित समय के लिए टाल देगा। लेकिन जब मौत का निर्धारित समय आ जाएगा तो फिर देरी नहीं होगी, अगर तुम समझ सको।
सूरह नूह की आयत नंबर 4 ये बताती है कि इंसान की आयु की समाप्ति दो तरह की होती है। एक अंत वो है जो टल सकता है और दूसरा अंत वो है कि मौत के और टलने की उसमें संभावना नहीं है। जीवन का वो अंत जो टल सकता है, ऐसा होता है कि यदि इंसान गलत काम कर रहा है तो मौत का समय और जल्दी आ सकता है, जबकि भले कर्म करने वालों की मौत टल सकती है। अलबत्ता निश्चित अंत जब आ जाता है तो फिर मौत को और नहीं टाला जाता।
इस बिंदु से बात समझ में आती है कि गुनाह से इंसान की आयु घट जाती है और इसके विपरीत भले कर्मों से जीवन लंबा होता है। चूंकि पापों का शरीर और आत्मा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, अतः यह बात समझ में आने वाली है। इस्लामी इतिहास में कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि पापों के कारण मरने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से मौत पाने वालों की संख्या से अधिक है। इसी प्रकार नेक कामों के कारण लंबी आयु पाने वालों की संख्या प्राकृतिक कारणों से लंबी उम्र पाने वालों से अधिक है।
आयत नंबर 5 से लेकर बाद की कुछ आयतों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस शिकायत का उल्लेख है जो उन्होंने तंग आकर अपने पालनहार से की। उन्होंने कहा कि हे पालनहार, मैंने अपनी जाति को दिन रात तेरे मार्ग की दावत दी, लेकिन मेरी इस दावत और निमंत्रण का असर उनके और दूर होने के अलावा कुछ नहीं निकला। जब भी मैंने उन्हें दावत दी कि ईमान लाएं ताकि तू उनके पापों को क्षमा कर दे, तो उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल ली और अपना कपड़ा अपने सिर पर डाल लिया और विरोध पर ही अड़े रहे और अकड़ का शिकार रहे। चूंकि किसी भी व्यक्ति को कोई निमंत्रण देने के लिए ज़रूरी है कि उसके भीतर इस निमंत्रण से कोई समरूपता मौजूद हो ताकि इस दावत का उस पर असर पड़े, तो अचरज की बात नहीं है कि वो हृदय जो अभी तत्पर नहीं है उन पर इस दावत का उल्टा असर पड़े। दूसरे शब्दों में इस तरह कहना चाहिए कि सत्य के शत्रु जब ईश्वर के भेजे गए दूतों की दावत सुनते हैं तो उसका विरोध करते हैं और यही विरोध उन्हें ईश्वर से और दूर कर देता है तथा उनके अस्तित्व में नास्तिकता की जड़ें और मजबूत कर देता है।
हजरत नूह की कौम के लोग अपने कानों में उंगलियां डाल देते थे ताकि उन्हें हजरत नूह की आवाज़ सुनाई न दे। वह अपने सिर पर अपने कपड़े ओढ़ लेते थे ताकि हजरत नूह की बात ही न सुनाई दे। शायद उनकी यही कोशिश भी होती थी कि हजरत नूह पर उनकी नज़र भी न पड़े। वैसे ये बड़ी हैरत की बात है कि इंसान सत्य का इतना दुश्मन हो जाए उसके बारे में कुछ सुनने पर भी तैयार न हो। इस सूरे की आयत नंबर 7 कहती है कि उनकी इस दुश्मनी का कारण उनका घमंड और उनकी अकड़ थी। यह चीज़ें लोगों को सत्य से दूर कर देती थी। इसके बावजूद हजरत नूह ने अपनी बहुत लंबी उम्र लोगों को सत्य के मार्ग पर बुलाने में बिता दी और थके नहीं। हजरत नूह ईश्वर की सेवा में अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं कि हे पालनहार, मैंने उन्हें सार्वजनिक रूप से भी निमंत्रण दिया और खुली सभा में ऊंची आवाज में उन्हें ईमान के मार्ग की ओर बुलाया। इतना ही नहीं, उन्हें खुलकर और गुप्त रूप से दोनों तरीके से निमंत्रण दिया। उन्हें ईमान और एकेश्वरवाद के बारे में बताया, लेकिन किसी भी चीज का इस अड़ियल कौम पर कोई असर नहीं हुआ।
इंसान अगर असत्य के मार्ग पर इतना आगे निकल जाए कि उसके अस्तित्व में पाप और भ्रष्टाचार जड़ पकड़ ले तो ये उसके स्वभाव का भाग बन जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वरीय दूतों का निमंत्रण भी उस पर कोई असर नहीं डालता। इस सूरे की आयतें हजरत नूह के अद्भुत संयम और अद्वितीय सहनशीलता को दर्शाती हैं। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक संघर्ष किया, तब भी बहुत कम लोग ईमान लाए। वो अपनी जाति के लोगों को शुभ सूचनाएं देते थे कि यदि पाप और अनेकेश्वरवाद छोड़ दो तो ईश्वर अपनी कृपा के द्वार तुम पर खोल देगा। आयत नंबर 10 से 12 तक हजरत नूह की दुआ का उल्लेख है कि मैंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अपने ईश्वर से क्षमा मांगो, वो बहुत क्षमाशील है, ताकि आसमान से तुम्हारे लिए सतत वर्षा और बरकतें भेजे और तुम्हारी धन तथा औलाद से मदद करे और तुम्हारे लिए बाग उगाए और नहरें उत्पन्न करे।
इसके बाद हजरत नूह ईश्वर की महानता की निशानियां बयान करते हैं और इस बात पर हैरत जताते हैं कि इंसान क्यों इन निशानियों को देखने के बाद भी सत्य का इनकार करता है। वह कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, ईश्वर की महानता से नहीं डरते जबकि उसने कई चरणों में तुम्हारी रचना की? क्या तुम नहीं देखते कि ईश्वर ने किस तरह एक के ऊपर एक 7 आसमान पैदा किए और उनके बीच चंद्रमा को प्रकाश और सूर्य को प्रकाशमान दीपक बनाया? ईश्वर ने तुम्हें वनस्पति की तरह जमीन से पैदा किया और उसी धरती में फिर वापस ले जाएगा, इसके बाद एक बार फिर तुम्हें जमीन से निकालेगा। ईश्वर ने तुम्हारे लिए धरती को फर्श बनाया ताकि उसके मार्गों पर चलो फिरो।
7 आसमानों में अरबों खरबों सितारे जगमगा रहे हैं, जिनमें कुछ हमारे सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशमान हैं। लेकिन हमारे जीवन पर जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वो यही सूर्य और चंद्रमा है जो हमें प्रकाश देते हैं। आयत नंबर 16 में सूरज को दीपक और चंद्रमा को प्रकाश कहा गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसके भीतर से निकलता है जिस प्रकार दीपक का प्रकाश निकलता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना नहीं है बल्कि वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है तथा दर्पण की भांति उसे प्रतिबिंबित करता है। इन आयतों में इस बात का उल्लेख है कि ईश्वर ने जमीन को फर्श की तरह बिछाया है जिसमें तुम्हारे जीवन की जरूरत की सभी चीजें हैं, जबकि पहाड़ों के बीच में जो दर्रे और रास्ते बनाए हैं उनसे तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। हजरत नूह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कौम के लोगों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में वे निराश हो गए तो ईश्वर की बारगाह में उन्होंने नास्तिकों को दंडित करने की दुआ मांगी। حضرت نوح نے کہا کہ ان لوگوں نے میری اوگیہ کی اور اس کا انوسرن کیا جس نے انہیں اولاد اور دھن کا گھاٹا پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ان کے مارگ درشکوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا اور بہت بڑے سموہ کو گمراہ کر دیا۔ ہے پالنہار، اتیاچاروں کی گمراہی اور بڑھا دے۔
انتتہ حضرت نوح کی قوم اپنے پاپوں کے کارن پانی کے طوفان میں ڈوب گئی۔ یہ سورہ اس دعا کے ساتھ سماپت ہوتا ہے کہ ہے پالنہار، مجھے میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایمان لا کر میرے گھر میں آ جائیں اور ایمان لانے والے سبھی پرشوں اور مہیلاؤں کو شما کر اور اتیاچاری کو تباہ کر۔